dakshinkosaltoday.com की वॉल से छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। आज जानकारी धमतरी की विंध्यवासिनी देवी अर्थात बिलई माता के बारे में। आलेख मुझ गहन धमतरी के शिडुमन लाल ध्रुव का है और वाचक स्वर है रायपुर की शुभ्रा ठाकुर का।
बिलाई माता के नाम से सुविख्यात विंध्यवासिनी देवी अर्थात महिषासुर मर्दिनी ही धर्म तराई धमतरी की उपास्य देवी हैं। प्रस्तर प्रतिमा के रूप में जिसका प्रादुर्भाव है वंशी राजा के अधीनस्थ किसी गांग वंशी मांडलिक के शासनकाल का बतलाया जाता है। तब से आज तक यह मंदिर इस क्षेत्र की जनता के लिए एकमात्र पूजन अर्चन तथा दर्शन का केंद्र बना हुआ है। यह मंदिर दक्षिण दिशा में नगर के बाहर महानदी की ओर जाने वाली सड़क के बाएं किनारे पर स्थित है। प्रतिमा आकार विहीन एक लिंगाकार गहरे श्यामल रंग के प्रस्तर रूप में है जिसके ऊपरी भाग में रजत धातु से देवी की मुखाकृति बना दी गई है। इसकी उत्पत्ति भूमि से ही हुई है, अतः जिस तरह बाल्यावस्था में किसी बालक का वर्धन होता है ठीक उसी तरह इस देवी की भी वृद्धि होती गई है। लोगों का विश्वास तो यहाँ तक है कि किसी समय इस देवी के मंदिर में नरबलि भी होती थी। धमतरी प्राचीन काल से बसा हुआ एक नगर है जहाँ ईसवी सन के पश्चात किसी वैदिक धर्मावलंबी मांडलक राजा की राजधानी होने का अनुमान है। इस राजा को अपने से छोटे से राज्य की सुरक्षा की रात दिन चिंता लगी रहती थी। यही कारण है कि वह प्रतिदिन अपने साथ कुछ घुड़सवार सैनिकों को लेकर रात्रि के समय नगर के भीतर तथा बाहर निगरानी किया करते थे। अपने इस सद्गुणी राजा के प्रति जनता में अटूट श्रद्धा थी। एक दिन जब वह राजा दक्षिण दिशा की ओर से चक्कर लगाकर लौटते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां वर्तमान में बिलाई माता का मंदिर है तो आगे आगे चलने वाले घुड़सवार का घोड़ा अड़ गया। घोड़े को बहुत मारा पीटा गया, तब कहीं जाकर घोड़ा आगे बढ़ा। इस तरह उस दिन राजा अपने सैनिकों सहित निर्धारित समय से लगभग एक घंटे बाद अपने घर पहुंचे। दूसरे दिन भी राजा उसी मार्ग से लौटे, घोड़ा ठीक उसी जगह फिर अड़ गया। उस पर मारपीट का कोई असर नहीं हुआ, अतः राजा ने घुड़सवार को नीचे उतारकर निकटवर्ती झाड़ियों को अच्छी तरह देखने का आदेश दिया। कुछ सैनिक ज्यों ही झाड़ियों में प्रविष्ट हुए त्यों ही उन्होंने देखा एक श्यामल रंग के लिंगावृत पाषाण की दोनों ओर दो बिल्लियां बैठी हुई हैं। सैनिकों को देखते ही बिल्लियां गुर्राने लगी। भय के कारण सैनिक आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर सके। थोड़ी देर बाद कुछ और सैनिक आ पहुंचे। उन्होंने प्रयत्न करके बिल्लियों को दूर भगा दिया और उन्होंने उस पाषाणाकृति के पास पहुंचकर उसका भली भांति निरीक्षण किया। झाड़ियों के बीच एक असाधारण सुंदर पाषाणाकृति को देखकर सैनिक आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें यह पाषाणाकृति रहस्यात्मक लगी। उन्होंने तुरंत ही यह सूचना अपने राजा को दी। राजा तुरंत ही शेष सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। उस पाषाणाकृति का निरीक्षण करने के बाद सोचा कि पाषाणाकृति को बाहर निकालकर नगर के मध्य में स्थापित कर दिया जाए। यह बात सबको जच गई, खुदाई का आदेश दे दिया गया। किंतु ज्यों ज्यों खुदाई गहरी होती गई त्यों त्यों उस प्रस्तर की मोटाई अधिक दिखने लगी। पर्याप्त खुदाई के बाद नीचे से जल की धारा बह निकली। उस दिन खुदाई का काम वहीं रोक देना पड़ा। दूसरे दिन खुदाई का काम प्रारंभ करने के अभिप्राय से सब अपने अपने घर लौट आए। आधी रात के समय स्वप्न में राजा को देवी ने कहा, मुझे अपनी जगह खोदकर अन्यत्र स्थापित करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इस विचार का सदा के लिए परित्याग कर दो। मुझे पूर्ववत रहने देने में ही तुम्हारा हित है, बल्कि ऐसी व्यवस्था करो कि तुम्हारी प्रजा इसी स्थान पर मेरी पूजा करे। अन्यथा कल खुदाई के समय जो जलधारा फूट निकली थी वह तुम्हारे राज्य के लिए घोर विपत्ति का कारण बन सकती है। इसके बाद राजा की निद्रा भंग हो गई। शेष रात्रि उन्होंने देवी का चिंतन करते बिता दी। सुबह होते ही उन्होंने अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों को देवी की प्रतिष्ठा हेतु आवश्यक सामग्री एकत्र करने का आदेश दिया। देवी की प्रतिष्ठा की सूचना सारे नगर में विद्युत गति से फैल गई। देखते ही देखते सारा नगर प्रतिष्ठा स्थल पर पहुंचा। शुभ मुहूर्त देखकर सुविज्ञ पंडितों ने विधि पूर्वक वेद मंत्रों का उच्चारण करके देवी की प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न किया। देवी के चारों तरफ एक सुंदर चबूतरा बना दिया गया। एक पुजारी की नियुक्ति कर दी गई। यही नहीं, पूजा कार्य के व्यय के खातिर राजा ने दर्री नाम का एक गांव भी देवी के नाम लिख दिया। कहा जाता है कि भोसला शासन काल तक यह गांव देवी के नाम से रहा, किंतु अंग्रेजी शासन काल में जब यहां माल गुजारी प्रथा की नींव पड़ी तब पुजारियों ने इस गांव को अपने नाम करा लिया, जो काफी समय तक उन्हीं के नाम से चलता रहा। जनमानस में विंध्यवासिनी देवी के प्रादुर्भाव पर आधारित एक और कथा है, जो इस प्रकार है। एक बार नगर के कुछ घसियारे घास काटने के लिए दक्षिण दिशा की ओर गए और उस झाड़ी में प्रविष्ट हुए जहां विंध्यवासिनी देवी अज्ञात रूप से अधिष्ठित थी। घसियारों ने देखा एक श्यामल वर्ण पत्थर के दोनों ओर बैठी दो बिल्लियां उनकी आहट पाकर गुर्रा रही हैं। किसी तरह अपने हसीये दिखाकर घसियारी उन बिल्लियों को भगाने में सफल हो गए। उसके बाद उस पत्थर पर रगड़कर उन लोगों ने अपने हसीये पैने किए। फिर वे घास काटने में जुट गए। अल्प समय में ही उन्होंने पर्याप्त घास काट ली। आश्चर्य की बात यह रही कि उनके हसियों की धार ज्यों की त्यों बनी रही। घसियारे इस रहस्य को जान सकने में असमर्थ थे। वे घर लौट आए। उस दिन उन्हें घास की बिक्री से पिछले दिनों की अपेक्षा अधिक मूल्य प्राप्त हुआ। रात के समय सपने में उन घसियारों को बोध हुआ कि जिसे मामूली पत्थर समझकर उन लोगों ने अपने हसीये की धार तेज की थी वह तो विंध्यवासिनी देवी है। प्रातःकाल उन लोगों ने अपनी यह स्वप्न कथा राजा तथा प्रमुख नागरिकों को कह सुनाई। इसके बाद सबके संवेद प्रयत्नों से वह स्थान पूजा का केंद्र बन गया। देवी के प्रादुर्भाव के संबंध में तीसरी कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत पहले यहाँ आदिवासी जातियां निवास करती थीं, जिनमें एक जाति बैगा कहलाती थी। ये पक्षियों को पकड़कर और बेचकर जीवन निर्वाह करते थे। एक बार कुछ लड़की चिड़िया पकड़ने की गरज से उसी झाड़ी में प्रविष्ट हुए जहाँ एक श्याम वर्ण प्रस्तर के आजू बाजू दो बिल्लियां बैठी गुर्रा रही थी। लड़के ने पता नहीं क्यों भावुकता से वशीभूत होकर कहा, हे बिलाई माता, आज हम अगर तुम्हारी कृपा से अधिक पक्षी पकड़ने में सफल हुए तो हम अपने में से किसी एक का बलिदान तुम्हारे नाम कर देंगे। देवी की कृपा से सचमुच उस दिन लड़कों ने अधिक पक्षी पकड़े। प्रसन्न मन से जब वह लौट रहे थे तो एक लड़के को बलिदान की बात स्मरण हो आई, मगर बलिदान के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब एक चतुर लड़के ने कहा कि सचमुच बलिदान ना देकर हम वचन का निर्वाह प्रतीकात्मक बलिदान करके कर सकते हैं। ऐसा कहकर उस लड़के ने चिड़िया का एक पंख हाथ में लेकर उसे छुरे की तरह अपनी गर्दन पर फिराया कि मैं बलिदान हो रहा हूँ। तभी चमत्कार हुआ, पंख के स्पर्श से ही उस लड़के की गर्दन कट गई, सिर धड़ से अलग हो गया। उसके सब साथी भयभीत होकर देखते ही रह गए। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी आकाशवाणी हुई कि लड़के का सिर और धड़ एक साथ रखकर उसे सफेद कपड़े से ढक दिया जाए। लड़कों ने वैसा ही किया। देवी के आशीर्वाद से वह लड़का जी उठा। बस फिर क्या था, विद्युत गति से यह बात सारे नगर में फैल गई। राजा ने जब यह बात सुनी तो उसे भी कम आश्चर्य नहीं हुआ। देवी के प्रति उसके मन में अगाध श्रद्धा उमड़ आई और उनके चारों ओर एक चबूतरा बनवाकर देवी के पूजन अर्चन का मार्ग सबके लिए प्रशस्त कर दिया। कहीं कहीं लोक विश्वास इन तीनों घटनाओं को एक ही दिन में घटित मानता है। घटना घसियारों द्वारा घास काटने की पहले ही घटी होगी। मध्याह्न के बाद पक्षी पकड़ने वाले लड़कों के साथ चमत्कार हुआ होगा। तभी इनके सम्मिलित आग्रह एवं प्रयास से देवी की सुखद स्थापना अविलंब हुई। अनुमान यह है कि प्रारंभ से देवी के लिए कोई मंदिर नहीं बनवाया गया, केवल चबूतरे से ही काम चलता रहा। गढ़ फुलझर के भैना राजा बिलाई माता को अपनी कुल देवी मानते थे तथा वर्तमान में उनके वंशज भी अपनी कुल देवी मानकर पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। भैना राजाओं ने अपनी कुल देवी बिलाई माता के नाम से बिलाईगढ़ बसाया। इसकी जानकारी बिलाईगढ़ थाने के पटल पर अंकित है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण मराठा सरदारों में से पवार कुलोत्पन्न एक व्यक्ति ने कराया। क्योंकि यह व्यक्ति देवी के चबूतरे से टकरा गया था। फलस्वरूप उसके पांव में एक भयंकर फोड़ा हो गया था। उस व्यक्ति ने इसे देवी का कोप समझा और मंदिर निर्माण का संकल्प ले लिया। जो ही मंदिर निर्माण का काम पूरा हुआ, त्यों ही उसकी चोट ठीक हो गई और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। कालांतर में जब यह मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया, तब ईसवी सन 1816-17 के लगभग मराठा कुल की ही एक साध्वी महिला सुश्री चंद्र भागाबाई ने इस मंदिर को नए सिरे से बनवाया, जो अब तक विद्यमान है। आज विंध्यवासिनी देवी के दर्शनार्थ दूर दूर से लोग आते हैं, मनौतियां मानी जाती हैं। इस मंदिर में त्याग तथा सेवा का प्रतीक भगवा ध्वज लगा हुआ है, जो कि वर्ष में केवल एक बार विजयादशमी के दिन बदला जाता है। विजयादशमी का पर्व देवी के मंदिर के पास ही परंपरागत ढंग से प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। मराठा सरदारों के वंशजों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों की भव्य शोभा यात्रा निकलती है। इस देवी का श्रृंगार विशेष रूप से लगातार 11 दिनों तक किया जाता है। अन्य दिनों की अपेक्षा देवी की प्रतिमा चित्ताकर्षक एवं स्फूर्तिदायिनी लगती है। एक बार इस देवी पर कांकेर के स्वर्गवासी राजा नरहर देव जू ने 108 बकरों का बलिदान किया था। इस बलिदान को यहाँ के एक तत्कालीन पुजारी मोतीराम जी ने अकेले ही अपने फरसे से संपन्न किया था। पहले इस मंदिर के प्रांगण पर ही माघ पूर्णिमा का मेला भरता था, जो कि अब रुद्री में भरने लगा है। ईसवी सन 1620 से अब इस मंदिर में बलिदान प्रथा बंद हो गई है। पहले इस मंदिर का सारा प्रबंध यहाँ के पुजारी किया करते थे, किंतु बाद में एक ट्रस्ट बना जो कि अब इस मंदिर की व्यवस्था करता है। मान्यता कुछ ऐसी है कि निष्काम भाव से जो आदमी देवी की आराधना करता है, उसकी इच्छा निष्फल कभी नहीं जाती। यही कारण है लोग भेदभाव से परे रहकर अत्यंत श्रद्धा एवं निष्ठा से देवी की पूजा करते हैं। भक्तजनों ने मंदिर के अहाते में अनेक स्मृति चिन्ह बनवा दिए हैं। इन स्मृति चिन्हों में एक श्री सेवई बन नामक योगी का चबूतरा है, जो बावली के पास है और लगभग 2.5-3 फीट ऊंचा है। इस योगी के संदर्भ में कहा जाता है कि जब तक वह यहाँ रहा, देवी के सानिध्य में ही रहा, पूजन आराधना और योगाभ्यास करता रहा, अंत में सारी सिद्धियां उसने प्राप्त कर ली। तत्कालीन धनी मानी लोगों ने इस योगी की योग विद्या का बहुत लाभ उठाया। कहते हैं भोसले शासन के अंतर्गत नागपुर से आकर बसे मराठों को जब अपने अन्य कुटुंबी जनों के कुशल समाचार बहुत दिनों तक नहीं मिलते थे, तब इस योगी की शरण में आते थे। योगी अपने योग बल से उन मराठों को उनके कुटुंबों के कुशल समाचार देकर प्रसन्न कर देता था। जब कभी कोई मराठा सदस्य तीर्थाटन के लिए जाता, तो योगी से यह वचन लेता था कि यात्रा के दरमियान वह उसे अमुक स्थान पर दर्शन दे और उस यात्री की शिक्षा को भी पूरी कर देता था। यात्री के संबंधी भी मंदिर में जाकर तीर्थाटन के लिए निकले अपने संबंधी के लिए कुशल क्षेम पूछ लिया करते थे। इस योगी के साथ निरंतर बने रहने के कारण एक अन्य व्यक्ति गंगाराम यादव को भी सिद्धि मिल गई थी। यह प्रतिदिन किसी एक नागरिक के घर जाता और सूर्योदय तक उसके घर आंगन तथा आसपास की जगह को साफ कर दिया करता था। स्नान ध्यान के बाद वह उस नागरिक के दरवाजे पर अपना काष्ठ पात्र लेकर पहुंच जाता था। सहज भाव से जो भी मिल जाता, उसी से वह संतुष्ट रहता था। नगर के संपन्न नागरिक गंगाराम से उनके योग बल द्वारा कई काम करवा लेते थे। अभी कुछ समय पहले देवी के एक भक्त श्री स्वयंभर प्रसाद जी थे। प्रतिदिन संध्या समय देवी के दर्शन के लिए अपने घर से 1.5-2 मील पैदल चलकर आते थे। यह नियम किसी भी मौसम में खंडित नहीं होता था। बरसात की एक शाम को जब ये देवी के दर्शन के लिए आ रहे थे, तो इन्हें रास्ते में एक जहरीले सांप ने काट लिया। लालटेन लेकर साथ चल रहे नौकर ने इनसे लौट चलने को कहा, किंतु ये नहीं माने। देवी दर्शन के बाद उन्होंने देवी की थोड़ी सी भभूत लेकर जहां सांप ने काटा था उस जगह पर लगा दी। इस तरह उन पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मनौतियां मानने वाले भक्त देवी को पिंवरी चढ़ाने के लिए हर सोमवार अथवा बृहस्पतिवार को आज भी आते हैं। नवरात्रि पर्व के समय ज्योत जलाते हैं तथा 10 दिनों तक देवी की उपासना में रत रहते हैं। यह देवी की कृपा है कि इस क्षेत्र का जनजीवन कभी असंतुष्ट नहीं रहा। दैवी विपत्तियां कभी कभी आती जरूर हैं, मगर खुलकर अपने प्रकोप का प्रदर्शन नहीं कर पाती। ममता की मूर्ति माँ विंध्यवासिनी देवी के चरणों में शत शत प्रणाम। हम लोगों पर उनकी अनुकंपा की छत निरंतर बनी रहे, यही कामना है।
दक्षिण कोसल टुडे .com की वॉल से छत्तीसगढ़ की जानी अनजानी बातें। छत्तीसगढ़ की देवियों के अंतर्गत आज हमने आपको जानकारी दी धमतरी की विंध्यवासिनी देवी अर्थात बिलई माता के बारे में। आलेख मुजगहन धमतरी के श्री डुमन लाल ध्रुव का था और वाचक स्वर था रायपुर की शुभ्रा ठाकुर का।
ये है अर्पा रेडियो।